जय राधमा भव कुंज बिहारी।
यह प्रवचन श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 अध्याय 5 श्लोक संख्या 32 पर श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा नई दिल्ली में दिया गया।
गोपी जाना बाला भाला धारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो ये श्लोक हमने इसलिए पढ़कर सुनाया क्योंकि कई बार लोग पूछते हैं कि शास्त्र में चैतन्य महाप्रभु जी के अवतार के विषय में कहां ज्ञान है। कई बार लोग पूछते हैं तो अनेक स्थानों में इस विषय का वर्णन किया गया है कि कलियुग में भगवान आएंगे चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में, जो कि लोगों से कीर्तन करवाएंगे। उनके रंग के विषय में भी कहा गया है, ये भी कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं छना अवतार है, मतलब कि हैं अवतार पर छुपे हुए अवतार। स्वयं भगवान है पर वो अवतारित हुए हैं किस रूप में, भक्त के रूप में। जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर जी अपने बड़े प्रसिद्ध भजन श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे में बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं सब अवतारों में सबसे क्या है, दया दयालु है। सब अवतारों में सबसे दया दयालु। और किस लिए वो अवतारित हुए हैं, पतितों का उद्धार करने के लिए। और अगर ध्यान से देखा जाए इस कलयुग की जो प्रजा है वो तो बहुत ही पतित है। बेशक भारतवासी सोचेगी हम तो पतित नहीं है, हमने तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, पर ध्यान से देखा जाए सब बड़े पतित हैं और दिन पे दिन और पतित होते जा रहे हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं आप तो अवतारित हुए हो पतितों के उद्धार के लिए, और सब पतितों में सबसे ज्यादा पतित कौन है, मैं हूँ। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी हमें उपदेश दे रहे हैं कि किस प्रकार की नम्रता से हमें भक्ति के मार्ग में प्रवेश करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जी अवतारित हुए थे फागुन पूर्णिमा की तिथि और सायंकाल का समय था और चंद्र ग्रहण उस समय लगा हुआ था। और क्योंकि चंद्र ग्रहण लगा हुआ था सब स्नान कर रहे थे गंगा में और भगवान का कीर्तन कर रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे। उनके पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्रा, माता का नाम था सची माता, और उनके दादा का नाम था उपेंद्र मिश्रा। जब भगवान अवतारित होते हैं तो उनके भक्त ही अलग अलग रूप या रिश्ता स्वीकार करते हैं। ये नहीं कि उनके माता पिता भाई कोई साधारण व्यक्ति के समान होते हैं। और भगवान ये मौका किनको देते हैं, अपने भक्तों को जिन्होंने गहरी तपस्या का पालन किया है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनको फिर ये मौका देते हैं अपने रिश्तेदार माता पिता भाई इत्यादि बनने के लिए। तो जगन्नाथ मिश्रा और सची माता कि पहले 8 बेटियां हुई थी जिनका जन्म में ही देहांत हो गया था, फिर उनका एक बड़ा भाई हुआ था विश्वरूप, जो है बलराम जी के अवतार भी माने जाते हैं, और फिर चैतन्य महाप्रभु जी ने जन्म लिया। जब उन्होंने जन्म लिया, उनको कई नाम दिए गए। भगवान के तो हजारों नाम है, एक दो नाम थोड़ी। एक नाम उनको दिया गया था निमाई। निमाई क्यों नाम दिया गया था? क्योंकि उनका जन्म हुआ था तो इसके अलावा एक और कारण भी था। एक कारण ये था क्योंकि उनके खानदान में 8 बहनों का जन्म हुआ था जिनका बचपन में ही देहांत हो गया था। तो अद्वैताचार्य की जो पत्नी थी जिनका नाम था सीता देवी, उनको ये भ्रम था कि ये भय था कि कहीं इस लड़के को कुछ नजर नहीं लग जाए किसी की। बंगाल में ये कहा जाता है कि नीम के पत्तों से अशुभ भाव दूर हो जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने एक और कारण था, ये निमाई नाम दिया था सीता देवी ने। फिर उनको गोरंगा भी कहा गया था। हाँ, उनका जो रंग था तपे हुए सोने जैसा रंग था। फिर गोर हरी क्यों कहा गया था, नाम दिया गया था? क्योंकि वो हरेक से हरि का नाम का उच्चारण करवाते थे। जब अक्सर साधारण बच्चे रोना बंद करते हैं जब माताएं उन्हें कुछ खेलने को दें, दूध पिलाएं, तो निमाई रोना बंद करते थे कब? जब लोग हरे नाम का कीर्तन करते थे। तो इस प्रकार उनको अनेक नाम दिए गए थे। उनके जो नाना जी थे जिन्हें बड़ा चक्रवर्ती, बड़े ऊंचे कोटि के ज्योतिषी थे, तो उन्होंने उनकी जन्मपत्री बनाई। जब बच्चे पैदा होते हैं तो जन्मपत्री बनाते हैं। उन्होंने देखा ये जो व्यक्ति है ये तो पूरी सृष्टि को संभालेगा, तो उनको क्या नाम दिया? विश्वंबर। और उन्होंने माता पिता को सब कुछ कहा कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। जैसे जब भगवान कृष्ण भी आए थे इस पृथ्वी पर, जब उन्होंने अपने आप को प्रकट किया था, तो उनके घर में भी एक ज्योतिषी आया था। क्या नाम था उनका? गार्गमुनि, जिसने कहा था कि ये लड़का कोई साधारण बालक नहीं है। तो नंदमोहन चक्रवर्ती निमाय के नाना जी ने सब कुछ कह दिया, सिर्फ एक संदेश नहीं दिया, एक ज्ञान छुपा कर रखा। क्या था वो? कि भविष्य में ये लड़का संन्यास लेगा। उन्होंने निमाय के माता पिता को कहा ये साधारण लड़का नहीं है, अलग अलग युगों में अवतारित हुआ है, पूरी सृष्टि को संभालेगा, सब कुछ कह दिया। पर सिर्फ ये नहीं कहा कि भविष्य में ये सन्यासी बनेगा। सन्यासी का मतलब है जो कि घर छोड़ेगा और केवल भगवान की सेवा में जुड़े रहेगा। ये उन्होंने अपनी उनके माँ बाप को नहीं कहा। तो भगवान गीता में कहते हैं जन्म कर्म चामे दिव्यम एवं विधि तात्पतः तत्कर देहम पुनः जन्म नहीं तुम तीसरे रजुना। मेरा संसार में आना जाना दोनों ही दिव्यम है। तो जब भगवान आते हैं तो वो दिव्य लीला प्रकट करते हैं, हालांकि साधारण रूप ग्रहण करते हैं, पर उनकी लीला देखी जाए तो दिव्य लीला मानी जाती है। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी ने भी दिव्य लीला प्रकट की बचपन से ही। ऐसे तो भगवान की अनेक बाल लीलाएं हैं, हम सब तो थोड़ी घटनाएं बताएंगे। एक समय एक सांप था, भगवान उसके सिर पर फुट पर नाच रहे थे, तो उनके जैसे भगवान भी नाचे थे कालिया सांप के सिर पर, तो उनके माता पिता को तो डर लग गया, अरे भाई ये जहरीलू सांप था। पर उन्होंने देखा कि सांप पर वो नाचे, पर फिर वो सांप वहाँ छोड़कर वो स्थान से चले गया। एक समय चोरों ने उनको उठा लिया था, उनका शरीर सजा हुआ था गहनों के साथ। चोरों ने सोचा कि हम इसको चुरा लेंगे, दूर ले जाएंगे और सोना वगैरह इस बालक का इसे छीन लेंगे। तो जहाँ भी वो दौड़ते थे अंत में ये देखते थे कि उस बालक की शक्तियों द्वारा उस बालक के घर में ही पहुंच जाते थे। माता पिता को चिंता थी कि कहाँ गया हमारा बालक, हाँ। पर अंत में चोर परिश जब उन्होंने देखा कि बाहर जहाँ भी भागते थे दूर जाने के बजाय उस बालक निमाई के घर पर ही लौट जाते थे, तो उस बालक को वहीं छोड़कर हाँ चले गए। एक समय उनकी बाल लीला तो अनेक है, मैं तो तीन चार घटनाएं सुनाऊंगा। एक समय उनके घर में एक ब्राह्मण यात्री आया था रहने के लिए, तो जगन्नाथ मिश्र उनके पिता ने उनका स्वागत किया, रहने का स्थान दिया और ब्राह्मण से कहा भोजन बना के आप खाइए। तो ब्राह्मण ने भोजन बनाया और जब वो भगवान को भोग लगा रहे थे तो क्या हुआ, इस बालक ने आकर उसे झूठा कर दिया। तब झूठा कर दिया तो ब्राह्मण ने सोचा ठीक है भगवान की शायद इच्छा है कि मैं आज नहीं खाऊं तो मैं भूखा सो जाता हूँ। ब्राह्मण किसी को दोष नहीं देता, अगर उसको किसी प्रकार का कष्ट भी अनुभव करना पड़ता है तो वो सोचता है कि मुझे तो हजार गुना ज़्यादा कष्ट भुगतना चाहिए था, ये तो भगवान की असीम कृपा है कि ना हल्का कष्ट भुगतना पड़ रहा है। तो पर जगन्नाथ मिश्र ने कहा नहीं 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 आपको जरूर खाना चाहिए, आप भूखा नहीं जा सकते, आप तो हमारे मेहमान हो। तो ब्राह्मण ने फिर से अपना भोजन बनाया और जो भगवान को भोग लगा रहे थे तो इन्होंने फिर से झूठा कर दिया। तो ब्राह्मण जरा तो परेशान हुआ, दो बार बनाया दो बार भोग झूठा हो गया। फिर ब्राह्मण ने कहा ठीक है मैं भूखा सो जाता, पर फिर विश्वरूप और जगन्नाथ मिश्र का नहीं 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 आप भूखा नहीं सो सकते। तो जब तक रात के लगभग 12 बज गए थे, सब सो गए थे, ब्राह्मण जागा था और जगन्नाथ मिश्रा ने अपने बेटे को बंद कर दिया एक कमरे के अंदर, बाहर से ताला लगा दिया 2 मील दूर के स्थान दूसरे कमरे। जब ब्राह्मण तीसरी बार भोग लगाकर भगवान को भोग लगा रहे थे तो उन्होंने देखा फिर से वहां भगवान प्रकट हो गए और जब उन्होंने कहा तुम निराश क्यों हो रहे हो, तुम्हें भोग लगा रहे हो मेरी खुशी के लिए ना, मुझे ही तो भोग लगा रहे हो तो मैं ही इसको चख रहा हूं, तुम निराश क्यों हो रहे हो। और फिर भगवान ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया और बताया कि हर जन्म में तुम मेरे साथ आते हो और साथ में ये भी कहा कि और किसी व्यक्ति को यह सूचना मत देना कि जो तुमने मेरा रूप देखा है, और किसी को यह मत बताना। तो ब्राह्मण के सामने एक समस्या आ गई, एक तरफ से तो वो बड़े प्रसन्न हुए कि उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त किया, पर दूसरी तरफ से वो ये नहीं चाहते थे कि साधारण व्यक्ति किसी प्रकार का अपराध करें भगवान के प्रति। पर भगवान ने उन्हें आदेश दे दिया था क्या कि तुम किसी और को मत बताना, हाँ किसी और को ये मत बताना। तो इस प्रकार भगवान के अनेक लीलाएं हैं। एक समय चैतन्य मंगल में एक बाल लीला का वर्णन है इस प्रकार का, एक समय जब वो छोटे से बालक थे तो उन्होंने एक पिल्ले को घर में पालना शुरू कर दिया, तो उनकी माता ने कहा अरे भाई हम तो ब्राह्मण हैं, ये पिल्ले को तुम घर में रख रहे हो ये कैसे, ये तो ठीक नहीं है वगैरह। हाँ पर मैंने पिल्ले को घर में रखा तो एक दिन वो पिल्ला घर में नहीं था, तो सब निराश हो गए देखने में कहाँ गया पिल्ला। फिर उन्हें पता लगा कि पिल्ला नवद्वीप में है शहर के बीच में और क्या कर रहा था, कीर्तन कर रहा था। पिल्ला दो पैरों पर नाच रहा था, दो हाथ ऊपर उठाया हुआ था और बड़े उत्साह के साथ कीर्तन कर रहा था, बड़े उत्साह के साथ, और सारे नवद्वीप के सब पूरी प्रजा नवद्वीप की वहां पहुंची, उन्होंने देखा पिल्ला दो पैरों में नाच रहे और दो हाथों से बड़ी प्रशंसा के साथ नाच रहा, भगवान को, भगवान के नाम को पुकार रहा है, तो सब बड़े आकर्षित हुए। वो सब ने ये स्वीकार किया क्या कि जो लड़का है निमाई, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। तो वो सबके सामने वो पिल्ला, एक रथ आया भगवान का, वो पिल्ले को लेकर भगवान के धाम लौट गया सबके सामने। एक समय निमाई की माता सती माता बेहोश हो गई, हाँ, तो निमाई बेचैन हो गए, तो पड़ोस की औरतों ने कहा तुम जाओ नारियल लाओ, पके हुए नारियल, पके हुए नारियल लाओगे तो फिर तुम्हारी माँ होश में आएगी। फिर वो जाकर पके हुए नारियल लाए और फिर उनकी माता होश में आई। तो निमाई छोटी सी आयु में ही संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान बन गए। 8 साल की आयु में उन्होंने संस्कृत ग्रामर के सारे नियम सीख लिए थे और उन्होंने संस्कृत का एक पाठशाला भी खोला। जब निमाई पहले वो संस्कृत पढ़ाते थे, जब वो संस्कृत पढ़ाते थे तो घर से जब वो स्कूल की तरफ जाते थे तो रास्ते में वो रुकते थे, एक भक्त जिनका नाम था खोला बेचा श्रीधर। ये खोला बेचा श्रीधर जो था भौतिक दृष्टि से तो गरीब था, साधारण धंधा था, केले के छिलके बेचने का और फल वगैरह। तो खोला बेचा श्रीधर बड़े साधारण भक्त थे। कहा गया है कि उनके पास एक ही धोती थी जिसमें 11 छेद थे और जो कमाई होती थी थोड़े पैसों की उसका आधा हिस्सा 50% वो खर्चते थे गंगा की सेवा में। तो निमाई रोज उनके पास जाते, उनसे सौदा करते थे, हाँ केले का क्या भाव, इसका क्या भाव, इसका क्या भाव। वो जो भाव कहते थे, कहते नहीं 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 ये तो बहुत महंगा है। फिर उसको निमाई उनको छेड़ते थे कि तुम्हारे पास जरूर कोई छुपा हुआ धन है, अंदर छुपा हुआ धन था भगवत प्रेम। तो कई बार वो खोला बेचा श्रीधर भगवान को मुफ्त में दे देते थे केला वगैरह पनियागिरी करने की जगह। तो इस प्रकार उनका बड़ा गहरा संबंध था। और खोला बेचा श्रीधर जो थे दिन रात हरि का नाम लेते थे, दिन रात, रात को सारी रात भगवान का नाम लेते थे। जो उनके पड़ोसी थे वो कहते थे अरे भाई ये सोता ही नहीं है आदमी, लगता है कि भूखा है तो भूख के कारण रात को चिल्ला रहा है। और कई बार निमाई भी उनको छेड़ते थे, देखो तुम तो कृष्णा भक्त हो तो गरीब हो, देखो तुम्हारे पड़ोसी तो दुर्गा देवी के भक्त हैं, वो कितने अमीर हैं। तो ये जो संबंध था बहुत ही गहरा था। और एक समय थोड़ी देर बाद जब निमाई ने अपने दिव्य रूप को प्रकट किया शिवाज ठाकुर के घर में, तो उन्होंने अपने 5 प्रसिद्ध भक्तों को अपना दिव्य रूप बताया और सबसे पूछा तुम्हें क्या वर चाहिए मांगो। और खोला बेचा श्रीधर से भी उन्होंने क्या मांगा, धन ऐश्वर्य नहीं। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो एक ही वर दीजिए, क्या कि हर जन्म में मैं आपकी सेवा कर सकूं। इसी प्रकार किसी प्रकार का उन्होंने भौतिक सुख वगैरह नहीं मांगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने भी भक्तों से तो आदेश दिया कि तुम ग्रंथों की रचना करो, पर स्वयं वो क्या छोड़ गए, केवल 8 श्लोक जिसको हम किस नाम से जानते हैं, शिव शास्त्र के नाम से जानते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या कहा है, न धनम न जन्म न सुंदरिम कवितां वा जगदीश कवये मम जन्मनि जन्मेश्वरे भक्ता भक्ति ऐतकी प्यारे। हे प्रभु मुझे धन नहीं चाहिए, खूबसूरत स्त्री नहीं, भौतिक शिष्य नहीं, क्या चाहिए, हर जन्म में आपकी सेवा का मौका चाहिए। और ठाकुर भक्तिनाथ जी बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे भगवान अगर मुझे अगला जन्म देना है तो बेशक कीड़े के रूप में दो, पक्का? हाँ, अमेरिका में
किसी वैष्णव के घर में, कीड़े के रूप में चला दो, पर किसी वैष्णव के घर में। तो ये होनी चाहिए भक्ति भावना। तो ये खोले बैठे श्रीधर के साथ जो लीला है, खोले बैठे श्रीधर के घर में एक ही बर्तन था। जब चैतन्य महाप्रभु जी ने अपना कीर्तन का आंदोलन आरंभ किया नवद्वीप में, तो उस समय बंगाल में मुसलमान राजा थे जिनका नाम था नवाब हुसैन शाह। और वो जो नवद्वीप स्थान है वहाँ एक मैजिस्ट्रेट था जिनका नाम था चंद खाद। जब उन्होंने कीर्तन आंदोलन आरंभ किया शिवाज ठाकुर के घर में रोज शाम को कीर्तन करते थे, तो जब उन्होंने चंद काजी ने अपने आदमियों को भेजकर वो मृदंगा भी तुड़वा दिया और कहा कि अगर तुम भविष्य में कीर्तन करोगे तो तुम लोगों को मुसलमान बना दिया जाएगा। पिछले हफ्ते हम लोग नवद्वीप परिक्रमा करते समय चंद काजी की समाधि पर भी गए थे और हमारे भक्तों ने बड़ा सुंदर नाटक किया था। तो मैं आपको ये बताना चाहता था, तो जब चैतन्य महाप्रभु जी की ये सूचना पहुंची तो उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जिसमें लाखों भक्त एक साथ गए चंद काजी के पास। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कीर्तन किया था कई घंटों के लिए। जब उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने पानी किसके बर्तन में पिया? खोले बैठे श्रीधर के घर में एक ही बर्तन था, तो उस बर्तन से जाकर पानी पिया। टूटा हुआ बर्तन था। जब खोले बैठे श्रीधर ने देखा कि मेरे बर्तन से भगवान ये पानी पी रहे हैं, उन्होंने कहा क्या, मत करो मत करो। पर चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या बताया इसके द्वारा कि जो भक्त हैं वो बड़े प्रिय हैं और भगवान आकर्षित होते हैं किसके द्वारा? भक्तों की भक्ति के द्वारा। तो निमाई पंडित, उनको पंडित नाम दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। और आजकल तो हम देखते हैं भारत में पंडित हो, गोस्वामी हो, हर प्रकार का गलत काम करते हैं तो भी हम उनको पंडित जी बुलाते हैं। तो पंडित का मतलब है जिसके पास ज्ञान हो। तो निमाई पंडित संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। उस समय एक और संस्कृत के पंडित थे जिनका नाम था केशव कश्मीरी। तो उन्होंने सबको लगभग हरा दिया था। आजकल जैसे ये क्रिकेट कंपटीशन होती है, फुटबॉल कंपटीशन होता है, उन दिनों में पंडितों में चर्चा होती थी और जो हार जाता था वो दूसरे को स्वीकार करता था कि मैं हार गया। तो केशव कश्मीरी ने भारत के सब पंडितों को हरा दिया था। पर फिर उसे पता था कि नवोदय में आज से 500 साल पहले जो बंगाल का इलाका था पूरे विश्व का सबसे धनी स्थान इलाका था, सबसे धनी। जैसे पूरे विश्व में हिंदुस्तान जो है सबसे धनी देश था पहले, तो बंगाल जो था सबसे धनी इलाका था पूरे विश्व का। तो केशव कश्मीरी और नवद्वीप जो था वो इंटेलेक्चुअल स्थान था। तो केशव कश्मीरी आए चैतन्य महाप्रभु जी को मिलने। चैतन्य महाप्रभु जी गंगा के किनारे बैठे थे अपने विद्यार्थियों के साथ। तो जब वहाँ पहुँचे तो केशव कश्मीरी ने कहा, आप ही हो वो बड़े प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान। तो उन्होंने कहा, सुनाइए कुछ संस्कृत के श्लोक। उन्होंने कहा, आप तो इतने प्रसिद्ध ज्ञानी हो, आपके सामने मैं तो कुछ नहीं हुआ, आप पहले सुनाइए। तो उन्होंने मिनटों में ही गंगा की प्रशंसा करते हुए 100 से अधिक श्लोक बना दिए। और फिर पूछा, फिर तुम्हें कैसे लगा, क्या विचार है? तो निमाई ने कहा, बड़ा सुंदर, पर इन इन श्लोकों में ये कमियां थी। और निमाई ने वो 100 श्लोक जो उन्होंने जिनकी रचना की थी सुना दिया, और इस श्लोक में ये कमी, इस श्लोक में ये कमी। तो कश्मीरी पंडित आश्चर्य हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने तो इतनी तेजी के साथ सुनाया था, तो मैं कैसे याद कर लिया एक ही बार सुनने में? ये तो संभव हो ही नहीं सकता। मैंने तो वायु की तेजी पर ये श्लोकों का उच्चारण किया था, तुमने कैसे एक बार सुनने में याद कर लिया? और जो दोष जो कमियां उन्होंने सुनाई उनका वो उत्तर नहीं दे पाए। उन्होंने कहा ठीक है मैं कल दूंगा उत्तर। तो केशव कश्मीर ने सारस्वती देवी से प्रार्थना की, कहा कि हर समय आपने मुझे बचाया है पर आज आपने मुझे उत्तर नहीं दिया, क्या बोलना चाहिए मुझे? तो देवी जी ने कहा ये जो निमाई है ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं भगवान है। फिर अगले दिन केशव कश्मीरी भी उनके चरण में गिरे और उनके शिष्य बने। एक बात सुनाना चाहता हूँ, जब पहले दिन जब केशव कश्मीरी के पास निमाई के प्रश्नों का उत्तर नहीं था तो निमाई के जो विद्यार्थी शिष्य थे वो जरा हंसने लगे, पर निमाई ने उनको रोक दिया। निमाई ने ये हमें सिखाया है किस प्रकार हमें हर एक व्यक्ति को आदर देना चाहिए। हालांकि केशव कश्मीरी जवाब नहीं दे पाए पर निमाई ने अपने विद्यार्थियों को रोक दिया हंसने से या हंसी उड़ाने से। तो हम सबको चैतन्य महाप्रभु जी की शरण लेनी चाहिए, उनके आदेश का पालन करना चाहिए और बिना किसी शंका के ये स्वीकार करना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा के आधार पर ही हम जीवन को सफल बना सकते हैं। कृष्णदास काविराज जी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से कठिन कार्य सरल बन जाता है, तो उनकी कृपा के बिना सरल कारण कठिन बन जाता है। उनकी कृपा से अंधा व्यक्ति देख सकता है, लंगड़ा व्यक्ति चल सकता है पहाड़ों के पार, बहरा व्यक्ति सुन सकता है, गूंगा व्यक्ति बोल सकता है। हम सबको उनकी शरण लेनी चाहिए। हरे कृष्ण।